पाठ 18 अध्याय 14।
पिछले सप्ताह हमने व्यवस्था विवरण अध्याय 14 का आधा भाग समाप्त कर लिया था और हमने अपना अधिकांश समय मानवीय इच्छा के उद्देश्य के ईश्वर सिद्धांत पर चर्चा करते हुए बिताया। उस चर्चा के दौरान मैंने आपको बताया था कि मानवीय इच्छा का उद्देश्य नैतिक विकल्प बनाना है और नैतिक विकल्प पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित ईश्वर के लिखित नियमों और आदेशों का पालन या अवज्ञा के बीच चयन करना है। नैतिक विकल्प के बाहर जो कुछ भी आता है वह व्यक्तिगत पसंद है और पसंद ईश्वर के नियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित नहीं होती। आमतौर पर कहा जाए तो पसंद कुछ इस तरह है जैसे लाल गुलाब या पीले गुलाब के बीच चयन करना या सुबह 9 बजे या 11 बजे चर्च सेवा में जाना या झंझरट बाइबल के बजाय छप्ट बाइबल रखना। इनमें से किसी भी विकल्प में पाप शामिल नहीं है जबकि सभी नैतिक विकल्पों में पाप शामिल है। निष्कर्ष यह था कि जैसा कि संत पौलुस ने कहा, बिना कानून के कोई पाप नहीं हो सकता, इसलिए कानून का अस्तित्व बना रहना चाहिए जैसा कि यीशुआ कहते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई नैतिक विकल्प कैसे होगा। आदम और हव्वा तथा अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के मामले में हम देखते हैं कि यदि कोई नियम या सीमाएं नहीं है तो कोई नैतिक विकल्प नहीं है। पाप एक ऐसा नैतिक विकल्प बनाने का कार्य है जो ईश्वर के विरुद्ध है, जैसे कि सीधे तौर पर उनके शास्त्रीय नियमों और आदेशों का उल्लंघन करना। और यदि जैसा कि आदम और हव्वा के लिए था, इससे पहले कि उन्हें पहला कानून दिया गया था, उस विशेष फल को खाने के विरुद्ध कानून, मानव जाति के पास कोई नियम नहीं है तो पाप करना असंभव हो जाता है। तो हमें उन पापों से बचने की क्या आवश्यकता है जो कि ही नहीं जा सकते। मैंने यह भी टिप्पणी की कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर ने मानव जाति के लिए जो सबसे पहला नियम बनाया था वह भोजन से संबंधित था, अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल खाना। इसलिए भोजन ही वह है जिसके बारे में अध्याय 14 में बात की गई है। परमेश्वर ने मूल रूप से भोजन का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया कि वह भेद करता है, कि वह विभाजित करता है और अलग करता है। परमेश्वर मानव जाति के लिए सीमाएं निर्धारित करते हैं, वह मना करते हैं और वह अनुमति देते हैं। विभाजित करना और अलग करना शायद परमेश्वर की प्राथमिक विशिष्ट गतिविधि है और यह हमें दिखाता है कि वह किस चीज को स्वीकार करता है और किस चीज को अस्वीकार करता है। मुझे आशा है कि आपने वह सुना जो मैंने अभी कहा। संभवतः परमेश्वर की सबसे दृश्यमान और प्रमुख गतिविधि विभाजित करना और अलग करना है, वह गतिविधि जिसका उपयोग वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक करता है, वह विभाजन और अलगाव है। उद्धार का कार्य वास्तव में विभाजन और पृथक्करण है, क्योंकि कुछ लोग उद्धार प्राप्त करेंगे और अन्य नहीं। यह प्रभु द्वारा रेत पर खींची गई रेखा के अनुसार है। जो लोग रेखा के एक तरफ खड़े होने का चुनाव करते हैं उन्हें उद्धार और अनंत जीवन मिलता है, जबकि दूसरी तरफ खड़े लोगों को नहीं। परमेश्वर ने विभाजन और पृथक्करण तब शुरू किया जब उसने सूखी भूमि को समुद्र के जल से अलग किया, जब उसने रात को दिन से अलग किया, जब उसने अच्छाई को बुराई से अलग किया। कोई कह सकता है कि उसने पुरुष और महिला के लिंगों को भी अलग किया। उसने अंततः मानव जाति को जनजातियों में विभाजित और अलग किया, फिर राष्ट्रों में, फिर उसने इसराइल राष्ट्र को सभी अन्य राष्ट्रों से अलग करके विभाजित और अलग किया, फिर उसने लेवी के गोत्र को इसराइल के अन्य गोत्रों से अलग किया और उन्हें याजकों और गैर याजकों में और भी विभाजित किया। लेकिन प्रभु ने अन्य तरीकों से भी चीजों को विभाजित किया है और भोजन उन तरीकों में से एक है। उसने भोजन को उपयुक्त और अनुपयुक्त में विभाजित किया, अनुष्ठान के अनुसार स्वच्छ और अशुद्ध, स्वीकार्य और अस्वीकार्य। इससे पहले कि हम व्यवस्था विवरण 14 के भोजन अनुभाग को फिर से पढ़ें, मुझे कुछ ऐसा कहना है जिसके बारे में मैं स्पष्ट और अटल हूं। खाने के लिए स्वच्छ और अशुद्ध वस्तुओं के बीच वह जो विभाजन करता है उसका तर्क संगत, तार्किक या स्वास्थ्यकर कारणों की किसी भी मानवीय अवधारणा से कोई लेना देना नहीं है। यह कि आहार स्वास्थ्य कुछ मामलों में समीकरण में आ सकता है, पूरी तरह से गौण है और यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसे हमें प्रभु द्वारा स्वच्छ और अशुद्ध खाद्य पदार्थों के बीच विभाजन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि के रूप में इंगित करना चाहिए। वास्तव में यहूदियों और ईसाइयों के बढ़ते समूह द्वारा आज यह धारणा मन में लाई जा रही है कि स्वच्छ के रूप में सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ अशुद्ध खाद्य पदार्थों की सूची की तुलना में स्वाभाविक रूप से स्वस्थ है। वास्तव में यह सही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाइबल के अनुसार कोशेर आहार खाने से हमें आध्यात्मिक और अलौकिक तरीके से ईश्वर के वचन के प्रति हमारी आज्ञाकारिता के कारण ईश्वरीय आशीर्वाद के रूप में स्वास्थ्य आशीर्वाद नहीं मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं कि खाद्य पदार्थों में सीधे निहित स्वास्थ्य लाभ हो और अन्य में सीधे निहित स्वास्थ्य नकारात्मकता हो। हालांकि यह निश्चित रूप से संभव है कि कुछ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जापानी लोग समुद्री खाद्य पदार्थ खाने के लिए उतने ही प्रसिद्ध हैं जिन्हें विशेष रूप से अशुद्ध होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है, जितना कि वे असाधारण रूप से स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए प्रसिद्ध हैं। चीनी और कई अन्य संस्कृतियां ऐसे जानवर खाती हैं जिनके पंजे होते हैं, कुछ ऐसा जो विशेष रूप से भोजन के रूप में बहिष्कृत है, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे किसी और की तुलना में कम जीवन जीते हैं या कम स्वस्थ जीवन जीते हैं। यह विचार कि बाइबल के अनुसार स्वच्छ खाद्य पदार्थों की सूची स्वच्छता और स्वास्थ्य पर आधारित थी गलत है। यह धारणा मध्य युग के यहूदी लेखकों से आई थी, जिनमें से कई प्रसिद्ध चिकित्सक बन गए थे, और यह साबित हो चुका है कि इसका कोई आधार नहीं है। बल्कि प्रभु ने जोर देकर कहा कि इसराइल को कोशेर खाने की आवश्यकता का एकमात्र कारण यह है कि इसराइल पवित्र है और परमेश्वर के आहार नियमों का पालन करना उनके पवित्रता को बनाए रखने के घटकों में से एक है। जब यहोवा पर भरोसा करने और उससे प्रेम करने के उचित संदर्भ में पूरा किया जाता है। हम पुराने नियम के कुछ भाग पाएंगे जिसके अनुसार कुछ कनानी लोगों ने वास्तव में इसराइल के कुछ खाद्य नियमों का पालन करने का फैसला किया, और यहां तक कि फसलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खेतों की देखभाल और रखरखाव से संबंधित अन्य नियमों का भी पालन किया, क्योंकि उन्होंने इसमें एक निश्चित मूल्य और लाभ देखा। लेकिन उन्होंने यहोवा पर भरोसा नहीं किया, इसलिए इसराइल के लिए जो पवित्र था वह केवल पवित्र की नकल था और इस प्रकार उनके लिए केवल सामान्य था। अब उदाहरण के तौर पर, कनानी लोगों ने निश्चित रूप से अपने खेतों को हर 7 साल में आराम देने से एक भौतिक लाभ प्राप्त किया होगा, अगर उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया था। लेकिन उन्होंने केवल यांत्रिक तरीके से उनमें से कुछ आदेशों का पालन करके परमेश्वर से पवित्रता का आशीर्वाद या इसके साथ आने वाली चीजें प्राप्त नहीं किया। भोजन को शुद्ध और अशुद्ध में विभाजित करके प्रभु हमें स्वर्गीय आध्यात्मिक सिद्धांत का एक और भौतिक और दृश्य प्रदर्शन दे रहे हैं। वे घोषणा करते हैं कि क्या पवित्र है अपने रहस्यमय कारणों से और बाकी सब कुछ अपवित्र है। फिर भी पवित्र चीजें केवल पवित्र लोगों के लिए ही होती हैं। इसीलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि अलग रखे गए लोगों को केवल वही खाना खाना चाहिए जो अलग रखा गया हो और जिसे शुद्ध घोषित किया गया हो, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर को स्वीकार्य हो। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने आखिरकार इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है कि पवित्रता केवल परमेश्वर द्वारा परिभाषित की जाती है, और फिर भी मैं आपको बता सकता हूं कि अन्य लोग मेरे पास आए हैं, फिर भी वे उस बिंदु को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं जो मैं यहां बता रहा हूं। यही कारण है कि मैं इसे इतनी बार उठाता हूं। परमेश्वर के अलावा किसी और चीज ने पवित्रता को स्वयं नहीं बनाया है। हर प्रक्रिया, अनुष्ठान, पशु, साधन, वस्तु या कानून जिसे परमेश्वर पवित्र समझता है, वह केवल इसलिए पवित्र है क्योंकि वह उसे पवित्र समझता है, और यह पवित्रता केवल तभी बनी रहती है जब इसका उचित संदर्भ में उपयोग किया जाता है। आप यीशु के शिष्य के रूप में केवल इसलिए पवित्र हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र दर्जा देने का दृढ़ संकल्प किया है और आपने इसे स्वीकार किया है, और यह दृढ़ संकल्प यह है कि यदि आप उनके पुत्र में विश्वास के माध्यम से उन पर अपना भरोसा प्रदर्शित करते हैं तो वह आपके पापों का भुगतान मानेंगे, उनके साथ आपका संबंध बहाल करेंगे और आपको अनंत जीवन देंगे। क्या प्रभु पवित्र दर्जा निर्धारित करने के लिए कोई दूसरा तरीका चुन सकते थे? मुझे लगता है कि वे चुन सकते थे। समय दिया जाए तो हम सभी शायद ऐसे कई दिलचस्प तरीकों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें प्रभु मनुष्य के उद्धार के लिए मानदंड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उनका पालन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए एक तरीका पवित्र है और दूसरा नहीं, और हमें दूसरे तरीके चुनने का विकल्प नहीं दिया गया है, चाहे वे हमें कितने भी तार्किक या सहनशील या पारंपरिक या आरामदायक क्यों न लगे।
आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 14 को पद 3 से शुरू करके अध्याय के अंत तक पूर्ण पर हैं। व्यवस्था विवरण 14:3 पर हैं, अंत तक।
जैसा कि हमने लैव्य व्यवस्था के अपने अध्ययन में इन सभी बातों को विस्तार से कवर किया है, हम यहां व्यवस्था विवरण में भोजन के मामले पर केवल हल्के से बात करेंगे। यदि आपको ताजा जानकारी की आवश्यकता है तो मेरा सुझाव है कि आप 12 क्लास के कुछ रिकॉर्ड किए गए पाठों को देखें। पद 3 आगे क्या होगा इसके लिए स्वर निर्धारित करता है और साथ ही एक सामान्य नियम भी स्थापित करता है। किसी भी इब्रानी को कोई भी घृणित या बेहतर घृणित चीज नहीं खानी चाहिए। इब्रानी में शब्द टोएवा है। अंग्रेजी में शब्दों का एक और अच्छा विकल्प घृणित हो सकता है। विचार यह है कि ऐसी चीजें खाना जिन्हें परमेश्वर ने वैध भोजन के रूप में अलग नहीं किया है, सबसे अप्रिय चीजों में से एक है जो कोई परमेश्वर के सामने कर सकता है। टोएवा एक मजबूत इब्रानी शब्द है जो उन चीजों के लिए आरक्षित है जो विशेष रूप से अशुद्ध, अपवित्र, गैर कानूनी है और जो इज़राइल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहने वाले व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल भी जगह नहीं रखते हैं। लेकिन भ्रमित न हो, टोएवा का यह सामान्य नियम अशुद्ध जानवरों की उस सूची से अलग या भिन्न नहीं है जिसे परमेश्वर अगले कुछ पदों में घोषित कर रहे हैं, बल्कि ये अशुद्ध जानवर टोएवा है जो इज़राइल द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किए जाने पर परमेश्वर के लिए घृणित है। मुझे आपको एक और दिलचस्प सिद्धांत याद दिलाने की अनुमति दें जिसका पालन करने में रब्बी बहुत अच्छे रहे हैं। जो तकनीकी रूप से मनुष्य द्वारा खाया और पचाया जा सकता है वह उसे वैध भोजन नहीं बनाता है। हम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, मिट्टी में खुदाई नहीं करेगा और केंचुए नहीं खाएगा, क्योंकि यह भोजन नहीं है, भले ही यह हमें नुकसान न पहुंचाए। दूसरे शब्दों में कहें तो जब हम सुपरमार्केट जाते हैं तो हमारी शॉपिंग लिस्ट में केंचुए शामिल नहीं होते हैं। कीड़े तकनीकी रूप से खाने योग्य हो सकते हैं, लेकिन बाइबल में उन्हें भोजन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। यह बाइबल में बाद में भी उसी तरह काम करता है। अशुद्ध भोजन के बारे में बात भी नहीं की गई है या उसे भोजन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अगर यह अशुद्ध है, भले ही यह तकनीकी रूप से खाने योग्य हो, लेकिन यह भोजन नहीं है। भोजन शब्द उन वस्तुओं पर लागू नहीं होता जिन्हें परमेश्वर ने अशुद्ध घोषित किया है। ध्यान दें कि पद 4 और 5 में कई अलग अलग जानवरों को भोजन के लिए उपयुक्त और इसलिए स्वच्छ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उनमें से केवल 3 जानवर पालतू जानवर हैं और बाकी जंगली शिकार हैं। कनान में जंगली शिकार की प्रचुर आपूर्ति थी और इसराइलियों ने बहुत सारे हिरण, मृग, पहाड़ी बकरी आदि खाए, सभी भोजन के रूप में पूरी तरह से स्वीकार्य थे। पद 6 हमें इस बात का सामान्य मानदंड देता है कि कैसे एक स्वच्छ जानवर का निर्धारण किया जाए जो 10 विशिष्ट जानवरों की इस सूची में नहीं है। उसे जुगाली करनी चाहिए और उसके खुर 2 भागों में विभाजित होने चाहिए, जैसा कि पद 7 उदाहरण के माध्यम से समझाता है। ऊंट, खरगोश और खरगोश कनान में प्रचुर और सामान्य जानवर जुगाली करते हैं, लेकिन उनके खुर अलग नहीं होते, इसलिए ये स्वच्छ नहीं है और इन्हें नहीं खाना चाहिए। फिर ये कहता है कि सुअर इज़राइल के लिए अशुद्ध हैं, क्योंकि सुअर के खुर अलग होने के बावजूद भी वह जुगाली नहीं करता। यहाँ मैंने जो पहले कहा था उसका एक आदर्श उदाहरण है। एक गाय सुअर की तुलना में खाने के लिए जरूरी नहीं है कि वह ज्यादा स्वच्छ या स्वस्थ हो, भले ही परमेश्वर एक को स्वच्छ और दूसरे को नहीं मानते हो। यह विचार कि सुअर खराब चीजें खाते हैं और इसलिए उनका मांस तुलनात्मक रूप से अस्वस्थ है, सही नहीं है, क्योंकि इसराइल के लिए कई स्वीकार्य जंगली जानवर, यहां तक कि बकरी जैसे पालतू जानवर भी कुछ भी खा लेंगे, अच्छाई यहां तक कि मुर्गियां भी लगभग कुछ भी खा लेंगी। मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं छोटा लड़का था, इंपीरियल वैली कैलिफोर्निया के कृषि समुदायों और खेत खलिहानों में रहता था, जब मैं अपने एक मित्र के साथ उसके पारिवारिक खेत पर सप्ताहांत बिता रहा था। हम मुर्गी के बारे से कुछ अंडे इकट्ठा करने के लिए बाहर गए थे, तभी हमने देखा कि एक छोटा चूहा गंदगी से भरे फर्श पर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुरंत ही एक मुर्गी ने उसे पकड़ लिया और उसे खा लिया। साथ ही अन्य मुर्गियां भी दावत में शामिल होने की कोशिश कर रही थी, और चिकन बाइबल के अनुसार एक कोशेर भोजन है। आगे सूचीबद्ध किया गया है कि किस प्रकार के समुद्री जीवों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और सामान्य नियम यह है कि उनके पास पंख और शल्क होने चाहिए, इसलिए ईल, शंख, झींगे, केकड़ा, स्क्विड, ऑक्टोपस और व्हेल जैसी चीजें भोजन के लिए स्वच्छ नहीं थीं। कुछ पक्षियों को भोजन के रूप में खाया जा सकता है, जैसा कि निर्गमन में जंगल में प्रदर्शित किया गया था, जब परमेश्वर ने जोर से शिकायत करने वाले इसराइलियों के लिए मांस के रूप में बटेर भेजा था। चूंकि वास्तव में एक पक्षी को दूसरे से अलग करने और इस तरह वर्गीकृत करने के लिए कोई दृश्यमान शारीरिक विशेषता नहीं है, स्वच्छ या अशुद्ध के रूप में सामान्य विशेषताएं नहीं दी गई हैं। इसके बजाय हमें पक्षियों की एक विशिष्ट सूची दी गई है जो अशुद्ध हैं। संभवतः अन्य सभी भोजन के लिए ठीक हैं। इसलिए हमेशा लोकप्रिय चिकन को हमेशा इब्रानियों के लिए एक अच्छा और स्वच्छ भोजन माना जाता है, और हम इसे आज यहूदी पवित्र दिनों के दौरान कई भोजन के केंद्र में पाएंगे।
अब व्यवहार में, क्योंकि पक्षियों की सैकड़ों और हजारों प्रजातियां हैं, आरंभिक इब्रानी आर्शियों ने निर्धारित किया कि यहां सूचीबद्ध पक्षियों, अशुद्ध पक्षी की कुछ व्यवहारगत विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है और उन्हें अन्य गैर सूचीबद्ध पक्षियों पर लागू किया जा सकता है जो समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किससे बचना चाहिए। अशुद्ध पक्षी व्यवहार की सूची में सबसे ऊपर वे हैं जो मृत मांस खाते हैं या शिकारी पक्षी हैं। वास्तव में कुछ अन्य तकनीकी विशेषताएं हैं जिनके बारे में रब्बियों ने निर्धारित किया है कि कुछ पक्षी अशुद्ध हैं, लेकिन हम आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। सामान्य तौर पर पक्षी जो मुख्य रूप से अनाज खाते हैं, भले ही वे कभी कभी कीड़ों के साथ पूरक हो सकते हैं, को स्वच्छ माना जाता है। हालांकि पसंदीदा पक्षियों की एक सूची भी बनाई गई थी, मुर्गियाओं, बटेर, कबूतर, तीतर, बत्तख और गीज, टर्की, कॉर्निश मुर्गियाओं और इस तरह के अन्य पक्षी यहूदियों की मेजों के लिए मानक भोजन है।
पद 19 कम से कम अंग्रेजी में थोड़ा बहुत दोहरापन जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि यह कहता है कि सभी पंख वाले झुंड वाले जीव अशुद्ध हैं, और फिर पलटकर कहता है कि उनमें से कुछ शुद्ध हैं। इस पैराग्राफ को समझने की कुंजी शब्द झुंड, इब्रानी में शेरेट्स है। शेरेट्स जीवित प्राणियों को संदर्भित करता है जो झुंड में रहते हैं या रेंगते हैं, कीड़े या चूहे या मेंढक और कुछ समुद्री जीव जो समुद्र तल पर चलते हैं, जैसे कि झींगा मछली और केकड़े आदि। प्राचीन इब्रानी लोगों द्वारा पहचाने जाने वाले एकमात्र स्वच्छ पंख वाले जीव कुछ पंख वाले कीड़े हैं, जैसे कि टिड्डियों की विशेष किस्में जो दो शक्तिशाली पिछले पैरों का उपयोग करके छलांग लगाती और कूदती हैं। इसलिए चींटियाओं, दीमक, ग्रब और इसी तरह के अन्य जीव शेरेट्स श्रेणी में आते हैं, और इसीलिए उन्हें भोजन के रूप में वर्गीकृत करने से मना किया जाता है।
पद 21 में हमें इस बारे में कुछ निषेध मिलते हैं कि स्वच्छ जानवरों को कब खाया जा सकता है, और यह इस बात पर केंद्रित है कि इन जीवित प्राणियों की मृत्यु किस तरह हुई। यदि वे प्राकृतिक मृत्यु, उम्र या बीमारी या आकस्मिक चोट से मर गए, तो आम तौर पर उन्हें नहीं खाया जा सकता है। और इस अवधारणा के बारे में मेरी बात को साबित करने के लिए कि यह जरूरी नहीं है कि अंतर्निहित स्वच्छता या पोषण का मामला एक जानवर को साफ या दूसरे को अशुद्ध बनाता है,
यहां हमारे पास एक निर्देश है कि भले ही ईश्वर के अलग किए गए लोग इसराइलियों को प्राकृतिक कारणों से मरने वाले किसी भी अन्य स्वच्छ जानवर को खाने से मना किया गया हो, लेकिन प्राकृतिक कारणों से मरने वाले जानवर को गैर को दिया जा सकता है या नौकरी को बेचा जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें ईश्वर ने इसराइल को गैर इसराइलियों को असुरक्षित, अस्वास्थ्यकर या जहरीला भोजन देने के लिए कहा हो। गैर एक गैर इब्रानी है जो इसराइल के बीच रहता है और इब्रानी समुदाय का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गया है और अधिकांश भाग के लिए इब्रानियों के ईश्वर और मूसा के नियमों का सम्मान करता है। हालांकि गैर वह व्यक्ति भी होता है जो आधिकारिक हैसियत से किसी इजरायली जनजाति में शामिल होने तक नहीं गया हो। नौकरी वह होता है जो इब्रानियों के बीच नहीं रहता, बल्कि वह इब्रानियों के साथ और उनके शिविर के बाहर रहता है। वह जरूरी नहीं कि यहोवा का सम्मान करे। अगर किसी इब्रानी का जानवर मर जाता है तो इब्रानी को या तो उसे गैर को उपहार के रूप में देना चाहिए या फिर उसे नौकरी को पैसे के लिए बेचने के लिए भी स्वतंत्र होना चाहिए। अब यद्यपि मैंने गैर और नौकरी के बीच एक काफी दृढ़ और निर्धारित करने में आसान रेखा खींच दी है, व्यवहार में अंतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अधिक प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रकार की वर्ग व्यवस्था जो उस युग के लगभग सभी समाजों में प्रचलित थी, और यह नियम कि प्राकृतिक कारणों से मरे हुए जानवरों को नहीं खाना चाहिए लेकिन अन्य लोग ऐसा कर सकते हैं, इस वाक्य में तुरंत बाद में समझाया गया है, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए समर्पित या कुछ संस्करणों में पवित्र लोग हो। दूसरे शब्दों में, जैसा कि मैंने दोहराने का मुद्दा बनाया है, इसराइल को अन्य लोगों की तुलना में अलग खाद्य कानूनों का पालन करना है, क्योंकि भोजन ही वह चीज है जो उन्हें अन्य संस्कृतियों से अलग करती है। इससे पहले कि हम व्यवस्था विवरण 14 के अगले भाग की ओर बढ़ें, जो विभिन्न मामलों से संबंधित है, मैं कोशेर खाने के बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि यह नए नियम और आधुनिक ईसाइयों से संबंधित है। यह स्वयं शास्त्रों में और उस युग के इब्रानी लेखन में मृत सागर स्क्रॉल के सामुदायिक दस्तावेजों से और मसीह के समय से पहले और बाद के अन्य यहूदी दस्तावेजों से भरे गोदाम में बहुत स्पष्ट है कि रब्बियों ने कोशेर खाने के नियमों का इतना विस्तार और बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया था कि स्वयं मूसा भी शायद उन्हें नहीं पहचान पाते। यदि आप कई तलमूडिक ट्रैक्टेट्स को देखें जिनमें आहार से निपटा गया है और उनकी तुलना लैव्य व्यवस्था और विशेष रूप से व्यवस्था विवरण से करें, जिसने इसराइल के कनान में प्रवेश करने के बाद आवश्यकताओं को सरल बना दिया था, तो आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया में इन इब्रानी सतों को इतनी विस्तृत प्रक्रियाओं की मांग करने के विचार कहां से मिले। मसीहा ने इस विषय पर जोरदार और स्पष्ट रूप से बात की और कहा कि इन और अन्य परंपराओं ने वस्तुतः परमेश्वर के वचन की जगह ले ली है, और अंत में यह कभी भी मायने नहीं रखता कि किसी व्यक्ति के मुंह में क्या गया भोजन जिसने उसे परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध या अशुद्ध बना दिया, बल्कि यह मायने रखता है कि क्या निकला, अर्थात वह भाषण जो उस व्यक्ति के अंतरतम विचारों को प्रकट करता है। यह निश्चित रूप से यीशु द्वारा तोरह के आहार नियमों को त्यागना नहीं था, क्योंकि उसने स्वयं मत्ती 5:17-19 में कहा था कि जब तक स्वर्ग और पृथ्वी समाप्त नहीं हो जाते तब तक कानून से एक अक्षर या कलम का एक भी निशान नहीं हटाया जाएगा। और जब हम ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करते हैं जो इसके बिल्कुल विपरीत है, माना जाता है कि संत पौलुस ने जो कहा उसके कारण, तो ध्यान रखें कि जबकि अधिकांश चर्च को इससे बेहतर कुछ नहीं पता हो सकता है, आप तोरहवीं कक्षा में जानते हैं। नए नियम के उन भागों में से एक जिसमें अज्ञानी ईसाई विद्वानों ने बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं, वह प्रेरितों के काम की पुस्तक में है, जब स्वर्ग से चादर उतारी जाती है और वह खाने के लिए अशुद्ध जानवरों से भरी होती है। मैं इस विषय पर वर्ल्ड बाइबिलिकल कमेंट्री, एक रूढ़िवादी इवेंजेलिकल ईसाई पुस्तक के संपादक डुआने एल क्रिस्टेंसन को उद्धृत करूंगा। पत्रस का एक बड़ी चादर का दर्शन जो 4 कोनों से धरती पर उतारी गई थी, जिसमें सभी प्रकार के अशुद्ध जानवर थे,
मुख्य रूप से गैर यहूदी व्यक्ति कुरनेलियुस को परमेश्वर के लोगों में शामिल करने के मामले पर एक प्रतीकात्मक संचार था। मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूं, पत्रस का यह दर्शन एक रूपक था। इसने उस युग में यहूदी धर्म के शायद प्राथमिक दृश्यमान और ज्ञात प्रतीक कोशेर भोजन को लिया और इसे दुनिया के कई गैर यहूदी लोगों के रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जिन्हें परमेश्वर अपनी मुक्ति योजना में शामिल करना चाहता था। हालांकि यहूदी धर्म ने दो सिद्धांत विकसित किए थे जो शास्त्रीय उद्देश्य से बहुत आगे निकल गए और इन सिद्धांतों ने यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच एक दुर्गम दीवार खड़ी कर दी। पहला यह था कि यहूदियों ने फैसला किया कि गैर यहूदी केवल सामान्य पवित्र के विपरीत लोग नहीं थे बल्कि वे स्वाभाविक रूप से अशुद्ध थे और एक यहूदी के लिए एक गैर यहूदी के साथ बहुत करीब से संपर्क में आना स्वचालित रूप से उस यहूदी को अशुद्ध कर देता था। दूसरा यह था कि कोशेर आहार कानूनों ने इसे एक व्यावहारिक असंभव बना दिया था कि एक यहूदी कभी भी ऐसा खाना खा सकता था जो एक गैर यहूदी ने तैयार किया हो। वास्तव में किसी गैर यहूदी की मेज पर खाना या किसी गैर यहूदी की मौजूदगी में खाना, चाहे खाना किसी ने भी बनाया हो, परंपरा के अनुसार मौजूद हर यहूदी को धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था। बेशक यह न केवल एक लोकप्रिय बल्कि बहुत असंतुलित और गैर शास्त्रीय दृष्टिकोण था बल्कि यह गैर यहूदी विश्वासियों के लिए थोड़ा आक्रामक भी था। इसलिए एक दिव्य दर्शन के माध्यम से पत्रस ने देखा कि प्रभु निश्चित रूप से उन मानव निर्मित पारंपरिक मान्यताओं का पालन नहीं करते थे और इसलिए पत्रस से कहा कि वह निश्चित रूप से गैर यहूदियों की संगति में हो सकता है क्योंकि गैर यहूदी स्वाभाविक रूप से अशुद्ध नहीं थे। समय के साथ संत पौलुस ने उस समझ को इस तरह समझा कि जब वह किसी गैर यहूदी के घर में था और अगर वह गैर यहूदी उसे ऐसा भोजन देता है जो पूरी तरह से कोशेर नहीं है तो संत पौलुस को वह भोजन खा लेना चाहिए क्योंकि यीशु के यहूदी और गैर यहूदी शिष्यों के बीच समझ और संगति की आवश्यकता उस स्थिति के लिए भोजन कानूनों से अधिक थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि संत पौलुस ने कभी सोचा था कि उन कानूनों को समाप्त कर दिया गया था बल्कि यह कल्वी होमर प्रकाश और भारी का सिद्धांत के सिद्धांत का एक प्रदर्शन था जिसके अनुसार जब दो ईश्वर सिद्धांतों के बीच एक स्पष्ट टकराव होता है जिससे दोनों का एक साथ पालन नहीं किया जा सकता है तो सबसे अधिक वजन वाले को चुना जाना चाहिए। आहार संबंधी कानून पर अनुभाग अब समाप्त होता है और देने और निष्पक्ष व्यवहार से संबंधित कानून पद 22 में शुरू होते हैं। नियमों का यह सेट व्यवस्था विवरण 15 और 16 में जारी रहेगा और यह वास्तव में मानवीय फोकस का एक और पहलू है जिसे मूसा मोआब के पहाड़ों पर अपने उपदेश में समझा रहा है। यह एक दिलचस्प घटना है कि अगर कोई पारंपरिक यहूदी धर्म को करीब से देखता है तो हम सामाजिक न्याय और निष्पक्षता के लिए बहुत अधिक चिंता देखते हैं और यह व्यवस्था विवरण ही है जो उनके लिए इस चिंता को प्रेरित करता है। दुर्भाग्य से जैसा कि हम जो कभी 3000 या उससे अधिक ईसाई संप्रदायों में से एक या अधिक से जुड़े रहे हैं हमने देखा है कि जब हम पवित्र शास्त्र के एक क्षेत्र पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं तो हमारे सिद्धांत परंपराएं और व्यवहार असंतुलित हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारे पास कुछ चर्चों में केंद्रीय किराएदारों के रूप में समृद्ध सिद्धांतों का उदय है या हमारे पास ऐसे अन्य लोग होंगे जो मानते हैं कि जहरीले सांपों को संभालना सच्चे विश्वास का प्रमाण है। इस असंतुलित सिद्धांतवादी ईसाई धर्म का एक और हालिया उदाहरण तथा कथित हंसने वाला चर्च है जो मानता है कि अगर हम बहुत हंसकर विशेष रूप से पूजा सेवाओं के दौरान अधिक खुशी दिखाएंगे तो हम बीमारियों से ठीक हो जाएंगे। अधिक सूक्ष्म वे हैं जो त्रिदेवों में से एक को दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं, चाहे वह कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा हो या दूसरों के लिए यीशु या शायद जिसके द्वारा परमेश्वर पिता है वह पूरी तरह से पुराने नियम का परमेश्वर है और इसलिए आज लगभग अप्रासंगिक है और इसी तरह और भी बहुत कुछ। आज हमारे पाठ में संबोधित करने के लिए बहुत सारे दूर दराज के सिद्धांत हैं
यहूदी ऐतिहासिक रूप से मानवीय सामाजिक न्याय पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करते रहे हैं कि उन्होंने उस चिंता को परमेश्वर की अन्य आज्ञाओं और लगभग उतनी ही बार सामान्य ज्ञान को भी पीछे छोड़ दिया है। जब हम यहोशू और फिर न्यायियों का अध्ययन करते हैं तो हमें असंतुलन की ओर ठीक उसी प्रवृत्ति के कई उदाहरण मिलेंगे जो वास्तव में गंभीर अवज्ञा के बराबर है। हम देखेंगे कि वादा किए गए देश में इसराइल के कई नेता विदेशियों के लिए निष्पक्षता और करुणा की अपनी मानवीय इच्छा को उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करेंगे जिन्हें करने से परमेश्वर ने मना किया है, अर्थात कनानियों के साथ संधि करना, उनकी सीमाओं के भीतर मूर्ति पूजक पूजा जारी रखने की अनुमति देना और यहां तक कि सम्मान दिखाने के लिए कुछ कनानियों के साथ विवाह में शामिल होना और सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आशा है।
आज हम इसराइल में भी ऐसी ही चीजें होते हुए देखते हैं। इसराइली सरकार आत्मविनाश की ओर अग्रसर है और वैसे अमेरिकी यहूदी आबादी के बहुमत द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। अपने दुश्मनों की मदद करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करके, जो यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसराइल के साथ शांति असंभव है। चाहे जो भी हो, मूर्ति पूजक दुनिया के लिए यह मांग करना एक बात है कि इसराइल फिलिस्तीनी कारण के लिए भूमि, संप्रभुता, यहां तक कि धन और जीवन भी त्याग दे। यहूदी लोगों और इसराइली सरकार के लिए लगभग एक ही बात की वकालत करना बिल्कुल अलग बात है।
यह बिल्कुल वही मानसिकता है जिसे मूसा के शिष्य यहोशू और उसके उत्तराधिकारी बढ़ावा देंगे। सामाजिक न्याय, प्रेम और दया के अपने मानवीय आदर्श के नाम पर वे वही काम करेंगे जो यहोवा ने उन्हें अपने विदेशी पड़ोसियों के साथ न करने को कहा था।
मेरे विश्वासी मित्र, मेरी बात सुने, यह सिद्धांत सिर्फ हमारे यहूदी भाइयों और बहनों पर ही लागू नहीं होता और सिर्फ इसराइल पर ही नहीं। हम यहूदी मसीहा को स्वीकार करके, जिसका अधिकार ईश्वर और इसराइल के बीच बाइबल के अनुबंधों पर टिका हुआ है, अपनी सुविधा और मनमर्जी से ईश्वर के नियमों और सिद्धांतों को दरकिनार नहीं कर सकते। हम प्रेम और दया पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह सार्वभौमिक मानवतावादी विलायक है जो प्रभु की विशिष्ट आज्ञाओं को समाप्त कर देता है कि हम उनकी पूजा को मूर्ति पूजक पूजा पद्धतियों के साथ न मिलाएं, न ही मूर्ति पूजक पवित्र दिन मनाएं या उन अनुष्ठानों को अपने साथ मिलाएं, न ही हमारे बीच मूर्ति पूजक देवताओं की उपस्थिति को सहन करें। कुछ मंडली अब अनिवार्य रूप से यह घोषणा कर रही है कि यहोवा और अल्लाह के बीच कोई अंतर नहीं है, यह किसी अन्य देवता की पूजा न करने की आज्ञा का उल्लंघन करता है। हमें निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना चाहिए, जो हम बहुत कम करते हैं, लेकिन हमें पुरुषों के दर्शन और मानवीय सापेक्षवाद के संदर्भ में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। प्रभु ने हमें जो मूल्य और सिद्धांत दिए हैं वे दुनिया के मूल्यों और सिद्धांतों से बेहतर हैं, भले ही दुनिया ऐसा न सोचे। 6.
भूमि की उपज का दसवां हिस्सा यहोवा को दिया जाना था। वह आखिरकार भूमि का मालिक था और इसलिए भूमि की उपज का एक हिस्सा उसे मिलना चाहिए था, लेकिन स्वामित्व से भी बढ़कर वह था जिसने भूमि को उसकी उर्वरता और वृद्धि दी। दशमांश अर्थात एक दसवां भाग केंद्रीय पवित्र स्थान में लाया जाना चाहिए। जब तक राजा सुलेमान ने 900 ईसा पूर्व के मध्य में यरूशलेम में परमेश्वर के लिए एक स्थायी मंदिर नहीं बनवाया, तब तक पवित्र तंबू जंगल के तंबू का स्थान कई बार स्थानांतरित किया गया था। इसीलिए हमें कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिखता जहां वेदी स्थित थी, हालांकि यह अपना अधिकांश समय शिलोह में आराम करते हुए बिताती थी। ईश्वर द्वारा निर्धारित दशमांश का उद्देश्य उस युग के लिए असामान्य था। दशमांश या ऐसा ही कुछ आमतौर पर मूर्ति पूजकों के बीच राजा को दिया जाने वाला कर मात्र था, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। दशमांश का उपयोग तंबू के रख रखाव और उन सभी लोगों के लिए किया जाता था जिन्हें इसकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था, पुजारी और लेवीय।
क्योंकि इसराइल कनान की भूमि में कई हजार वर्ग मील में फैला हुआ रहने वाला था, इसलिए अपनी उपज को भेंट के रूप में केंद्रीय पवित्र स्थान तक लाने की दूरी एक मुद्दा था। कुछ मामलों में यह लंबी यात्रा के दौरान बस खराब हो जाती थी। अन्य मामलों में यदि यह जानवर थे
तो संभवतः कुछ जंगली जानवरों या रास्ते में दुर्घटनाओं के कारण खो जाते थे। और इससे भी अधिक व्यावहारिक रूप से, यदि किसी के पास पर्याप्त खेत थे और इस प्रकार उस पर पर्याप्त दशमांश बकाया था, तो उसे उस सारी उपज को तंबू तक ले जाने के लिए बड़ी मात्रा में गाड़ियों और श्रम की आवश्यकता होती थी। इसलिए पद 24 में हमें यह सिद्धांत मिलता है कि उत्पादन को पैसे के बदले में बदला जा सकता है, यानी उस उत्पादन को पैसे का मूल्य दिया जा सकता है और पैसे को उसके बदले में दिया जा सकता है। इसने यहूदी परंपरा को भी जन्म दिया है कि पैसे को जमे हुए श्रम के रूप में देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हम मजदूरी के लिए काम करते हैं और पैसा हमारे श्रम समय का प्रतिनिधित्व करता है, फिर हम अपना पैसा देते हैं और यह अनिवार्य रूप से हमारे श्रम के देने के समान ही है। फिर पद 27 में चेतावनी दी गई है कि अपने बीच रहने वाले लेवियों की उपेक्षा न करो। बात यह है, लेवियों को 12 कबीलाई क्षेत्रों में रहने के लिए 48 शहर दिए गए थे। उन लेवियों और उनके शहरों का समर्थन करना जनजातियों का कर्तव्य था। हालांकि यहां जिन लेवियों की बात की जा रही है वे याजकों से अलग हैं। याद रखें कि लेवी के गोत्र में से केवल कुछ ही परिवार पुजारी हो सकते थे। शेष बहुमत तंबू के आसपास काम करने वाले मजदूर थे और वे मुख्य रूप से याजकों के लिए काम करते थे। शास्त्र आम तौर पर याजकों को पुजारी कहकर और उन गैर याजक कामगारों को लेवियां कहकर इस अंतर को स्पष्ट करते हैं। याजकों को उनकी आजीविका का अधिकांश हिस्सा अनुष्ठान बलिदान के हिस्से से मिलता था जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेवियों को आम तौर पर अनुष्ठान बलिदान का हिस्सा नहीं मिलता था, इसलिए उन्हें दशमांश और भेंट से ही अपना भरण पोषण मिलता था। अब इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ आया है। हर 3 साल में मिलने वाला वार्षिक दशमांश केंद्रीय अभयारण्य टैबरनेकल में नहीं ले जाया जाता था, इसके बजाय उन्हें किसी भी शहर या गांव में संग्रहित किया जाना था। यह इब्रानी कल्याण प्रणाली का मूल था। इन सामुदायिक भंडारों से गरीब और बीमार लोग जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा लेवियों को भोजन के इस भंडार से लेने की अनुमति थी और भंडार में पैसा भी शामिल था, क्योंकि अब तक उपज को पैसे के बदले में दिया जा सकता था और दशमांश और चढ़ावे के लिए पैसा दिया जा सकता था। कृपया यह भी ध्यान दें कि खाद्य गोदाम सभी वंचित लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाना था, विधवाएं, अनाथ, यहां तक कि विदेशी भी।
यहां व्यक्त सिद्धांत यह है कि हर समय गरीबों और जरूरतमंदों के हित प्रभु के सामने खड़े रहते हैं और वह मनुष्यों के बीच उस जरूरत को पूरा करने के लिए अपने लोगों को सबसे ऊपर देखता है। और जबकि किसी के परिवार की जरूरतें और फिर उसके विश्वासियों के समुदाय की जरूरतें कुछ प्राथमिकता रख सकती हैं, यह सक्रिय दान को अनदेखा करने का बहाना नहीं हो सकता जहां भी इसकी जरूरत हो। हम अगले सप्ताह अध्याय 15 शुरू करेंगे, जिसमें गरीबों और विकलांगों की सुरक्षा के लिए यहोवा द्वारा दिए गए आदेशों का और विस्तार किया जाएगा।